पृष्ठ संख्या 40, समानता के लिए काले लोगों का संघर्ष। संयुक्त राज्य के अंदर अन्य प्रकार के तनाव और संघर्ष भी चल रहे थे, जिनमें से कुछ तो आज भी समाप्त नहीं हुए हैं। संपत्ति के चंद हाथों में सिमट आने से उत्पन्न कठिनाइयों के अलावा अमेरिकी जनसमाज के बहुत बड़े हिस्से अन्य अनेक असुविधाएं भी झेल रहे थे। औद्योगिक विकास का मतलब आम लोगों की खुशहाली में बढ़ोतरी नहीं था। 100 साल से कुछ ही अधिक काल के दौर में उत्तर अमेरिका में रहने वाले अमेरिकी इंडियन काबिलों की लगभग सारी जमीन और संपत्ति छीन ली गई और उनकी जीवन पद्धति बिल्कुल बिखर गई। 1890 तक उनकी परवस्ता की प्रक्रिया प्रायः पूर्ण रूप से संपन्न हो चुकी थी और गोरों ने उनके लिए जितना कुछ छोड़ दिया था उन्हें इसी पर संतोष कर लेना पड़ा। स्वतंत्रता और समानता के लिए काले लोगों, अफ्रीकी अमेरिकी का संघर्ष 19वीं सदी से अमेरिकी इतिहास का एक बड़ा मसला रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका जब गणतांत्रिक शासन पद्धति वाले एक स्वाधीन राष्ट्र के रूप में उदित हुआ, तब से लगभग 80 वर्षों तक उस देश में गुलामी की प्रथा चलती रही। 1860 में लगभग 3 करोड़ 10 लाख की कुल आबादी में लगभग 40 लाख गुलाम थे, जो संयुक्त राज्य के दक्षिणी राज्यों के लगभग 2.25 लाख लोगों की इच्छा के दास थे। 1865 में गृह युद्ध के बाद वहां से गुलामी की कुप्रथा समाप्त कर दी गई। उसके बाद लगभग 10 वर्षों तक कालों को उनके अधिकार दिलाने की कोशिश चलती रही। 1868 से संयुक्त राज्य में जन्मे या पले बढ़े सभी लोगों को नागरिकता के अधिकार प्रदान किए गए। इन अधिकारों में किसी भी तरह से कोई काट छांट नहीं की जा सकती थी। 1870 में संविधान का 15वां संशोधन पारित हुआ और अब यह कानून बन गया कि प्रजाति, रंग या पहले की गुलामी की स्थिति के कारण किसी भी नागरिक को मत देने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा और ना उसके इस अधिकार में कोई काट छांट की जाएगी। इससे पहले तक उत्तरी राज्यों में भी, जहां गुलामी नहीं थी, ज्यादातर कालों का किसी न किसी बहाने से इस अधिकार से वंचित रखा गया। अब दक्षिणी राज्यों में भी, जहाँ काले लोग स्वतंत्र तो हो गए थे लेकिन बहुत गरीब थे, उन्हें न केवल मताधिकार प्रदान किया गया बल्कि उस पर अमल भी करवाया जाने लगा। 1870 के दशक तक चलने वाले इस काल को पुनर्निर्माण काल, रिकंस्ट्रक्शन पीरियड भी कहा जाता है। कई मायनों में यह पहला दौर था जब संयुक्त राज्य में सच्चे अर्थों में लोकतांत्रिक प्रणाली लागू हुई थी। लेकिन जब दक्षिणी राज्यों के भूतपूर्व गुलाम मालिकों को फिर से सत्ता सौंप दी गई और वहां से संघीय सेना वापस बुला ली गई, तो उसी के साथ हुआ स्वर्णिम दौर भी समाप्त हो गया और काले लोगों को राजनीतिक तथा कानूनी अधिकारों से वंचित रखने का तथा प्रजातिगत भेदभाव एवं जोर जुल्म का सिलसिला फिर से आरंभ हो गया। 20वीं सदी का आरंभ होते होते तो काले लोग अपने सभी कानूनी तथा राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर दिए गए और गोरों तथा कालों के अलगाव पर सख्ती से अमल किया जाने लगा। काले और गोरे रेलगाड़ी के एक ही डिब्बे में साथ साथ यात्रा नहीं कर सकते थे। वे एक ही पार्क में या समुद्र तट पर नहीं जा सकते थे। एक भोजनालय में खाना नहीं खा सकते थे। साथ साथ स्कूल में नहीं पढ़ सकते थे। एक ही थिएटर में मनोरंजन के लिए नहीं जा सकते थे और ना एक ही अस्पताल में अपना इलाज करवा सकते थे। अलगाव के साथ साथ हिंसा का दौर भी चल निकला। अनुमान है कि 19वीं सदी के अंतिम दशक में हर साल गोरों की भीड़ लगभग 200 काले लोगों को पकड़कर मार डाला करती थी। इसे अंग्रेजी में लिंचिंग कहा जाता है। नस्लवाद समाज में आर्थिक असमानताओं को पुख्ता करने का भी एक उपकरण बन गया। काले लोग अमेरिकी समाज के आर्थिक दृष्टि से सबसे दलित लोग थे, लेकिन ज्यादातर गोरे भी गरीब थे और उनका भी खूब शोषण होता था। नस्लवादी भावना को उभारने का यह भी मकसद था कि काले गोरे दोनों वर्गों के आम लोग शोषण के खिलाफ एकजुट ना हो पाए। वैसे तो काले लोगों को पूरे देश में भेदभाव के दंश को सहना पड़ता था, लेकिन दक्षिणी राज्यों में उनकी स्थिति उत्तरी राज्यों की अपेक्षा बहुत बुरी थी। 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों तक नस्ली भेदभाव के खिलाफ एक प्रबल आंदोलन खड़ा हो गया। लगभग आधी सदी तक WEB Du Bois इस आंदोलन के शलाका पुरुष बने रहे। 1909 में गैर गोरे लोगों की तरक्की के लिए नेशनल एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपुल नाम की संस्था गठित की गई। नस्लवाद के विरोधी बहुत से गोरों ने भी काले लोगों के संघर्ष को समर्थन दिया, लेकिन नस्ली भेदभाव मिटाने और नस्ली अलगाव की अमानवीय प्रथा को समाप्त करने की दिशा में ठोस प्रगति आधी सदी से भी कुछ अधिक काल के बाद ही संभव हो पाई। ऊपर बताया जा चुका है कि जिन यूरोपीय देशों में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली थी, उनमें भी स्त्रियों को मताधिकार से वंचित रखा गया था। यही स्थिति संयुक्त राज्य अमेरिका में भी थी। महिला मताधिकार आंदोलन 19वीं सदी के मध्य से आरंभ हुआ था और 20वीं सदी के प्रारंभ में यह एक अहम मसला बन गया, लेकिन अमेरिकी स्त्रियों को संयुक्त राज्य के संविधान द्वारा 1920 में जाकर मताधिकार प्रदान हुआ।